ख्याल में आएगा। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु जिन्हें नवोकार महामंत्र में नमस्कार किया जाता है, ये आखिर हैं क्या? इनका जन्म स्थान क्या है? इनका कच्चा मटेरियल क्या है? ये किस चीज की बनी हुई हैं? कौन कौन? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। तो ये कहते सब आत्मा की अवस्थाएं, ये सब एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। जब ये सब एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं तो मैं तो एक आत्मा की ही शरण में जाता हूं, क्योंकि आखिर एक आत्मा से ही तो ये सब बनी हुई हैं। जैसे जब डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हें डायबिटीज है, शक्कर की बीमारी है, तो तुम मिठाई मत खाना। शुगर शुगर की बीमारी है तो शुगर मत खाना, शक्कर मत खाना। और दूसरे दिन और ज्यादा बीमार हो गया तो डॉक्टर ने कहा तुमने शुगर तो नहीं खाई थी? कि नहीं, मैंने नहीं खाई थी, बस एक गुलाब जामुन खाया था, एक पेड़ा खाया था, एक लड्डू खाया था। क्यों? थोड़ी खीर खाई थी। कि भाई साहब एक क्या बात करते हो, हमने आपको कहा था ना कि शक्कर नहीं खाना, तो शक्कर किसने खाई? शक्कर तो हमने नहीं खाई, लेकिन ये लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खीर आखिर सब शक्कर की ही तो बनी हुई है। तो एक शक्कर के निषेध में सारी मिठाइयों का निषेध हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही एक भगवान आत्मा की शरण में जाने से पांचों परमेष्टियों की शरण में जाया जाना हो जाता है। इसलिए कुंद कुंदाचारी देव कहते हैं कि जब ये पांचों अवस्थाएं एक आत्मा से ही बनी हुई हैं, तो मैं इन एक एक की शरण में जाने के बजाय एक आत्मा की ही शरण में क्यों न जाऊं? फिर बोलता हूं मैं ठंड, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। इस गाथा को मैं आचार्य कुंद कुंद का नमोकार महामंत्र कहता हूं। क्यों? क्योंकि नवोकार महामंत्र में भी तो आखिर पंच परमेष्टियों को ही नमस्कार किया गया है, उन्हें ही याद किया गया है। तो इस गाथा में भी आखिर कुंद कुंद ने पंच परमेष्टियों को याद तो किया ही है। नवोकार महामंत्र भी एक गाथा है, एक छंद है। आप भले ही उसे गद्य के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन वो तो षटखंडागम का मंगलाचरण है जिसे आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने लिखा है। और वो ऐसे बोला जाता है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वाजायाणम नमो लोये सभ्य साहूणम। जैसे हम समय सार की गाथा में बोलते हैं ना, ऐसे ही नवोकार मंत्र है। वंदे तु सभ्य सिद्धे भुव मतल मणो वयम गयम पत्ते गोच्छामी समय पाहुड़े मैंने मोसे केवली बणम। दृढ़ संग्रह की गाथा बोलते हैं, जीवम जीवम दब्बम जिन वर बस हेण जेण ने दिथम देविंद बिंद बिंदम बंदे तम शब्द दासिरसा। ऐसे नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरीयारम नमो वाज्यायारम नमो लोये शब्द सा पूर्णम। ये प्राकृत भाषा का गाथा छंद है। जैसे हिंदी में दोहा होता है ना, अभ्रंश में दुआ होता है, संस्कृत में आर्या होता है, ऐसा ही प्राकृत भाषा में ये गाथा छंद होता है। ये पद्य है, गद्य नहीं है। और भूतवली प्रसुदंत ने इसे लिखा है। इसे हम अनादि निधन महामंत्र बोलते हैं। जब किसी आचार्य ने लिखा है तो वो अनादि कैसे हो सकता है? तो अनादि वो भाव की दृष्टि से है। जब पंच परमेश्वरी भी अनादि काल से हैं और उन्हें नमस्कार करने वाले भी अनादि काल से हैं। इस तरह एक भाव की दृष्टि से अनादि है, भाषा की दृष्टि से तो 2000 वर्ष पुराना ही है। ये जो गाथा छंद है ये तो भूतबली प्रसुदंत आचार्य ने लिखा हुआ है। तीन चीजें ऐसी हैं जैन दर्शन में जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं। एक नमोकार महामंत्र, एक भक्तांबर काव्य और एक तत्वार्थ सूत्र। इसमें दो तो भक्ति के ही काव्य हो गए, नमोकार मंत्र और भक्तांबर। सिर्फ एक बचा जो मूल ग्रंथ है, जो मोक्ष मार्ग को बताने वाला है। तो इस नमोकार महामंत्र को हम महामंत्र कैसे बन गया है? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? हम इस पर विचार करें आज। क्या कि ऐसी इसमें क्या खासियत है कि जो जैनियों का महामंत्र बन बैठा और सभी जैनी चाहे दिगंबर हों, सितंबर हों, थानकवासी हों, सुबह उठ के 108 दफे नहीं तो कम से कम 9 दफे तो बोलते ही हैं, और ना बोले रोजाना तो कोई संकट आ जाए, शेर सामने आ जाए, भयंकर बरसात आ जाए, पेट में दर्द हो जाए तो हम बोल ही लेते हैं ना भाई साहब। आखिर जैनियों के रोम रोम में बस गया, ऐसी इसमें क्या खासियत है मणिकंज? इसका हम हिंदी अर्थ करके देखें तो कोई खास बात नजर नहीं आती। क्या है मालूम? अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। क्या है ऐसी बात इसमें जो गूढ़ रहस्य हो, जो किसी की समझ में न आए? सीधा सच्चा जो हमारे पंच परमेश्वरी हैं उन्हें सहज भाव से नमस्कार किया गया है। इसमें मंत्र की बात क्या है? क्यों जी, पिताजी को नमस्कार हो, मम्मी को नमस्कार हो, बड़े भाई साहब को नमस्कार हो, क्यों दादाजी को नमस्कार हो, अब इसमें महामंत्र क्या आ गया? आखिर हमने अपने धर्म पूर्वजों को याद ही तो किया है। अरे मम्मी पापा हमारे पूर्वज हैं लौकिक, तो अरहंत सिद्ध हमारे धर्म पूर्वज हैं, हमने उन्हें नमस्कार किया, इसमें मंत्र की बात क्या आ गई? इससे एक बात मालूम पड़ती है कि जैन दर्शन में कोई चमत्कार भमस्कार की महिमा नहीं है। यदि होती तो कोई होम भ्राम भ्रूम भ्राम धम झा फिंदे फिंदे भिंदे भिंदे इसे मार काट, ऐसा कोई मंत्र महामंत्र बन जाता। ऐसा कोई मंत्र महामंत्र नहीं बना और सीधा पंच परमेश्वरी धर्म पूर्वजों को जिसमें याद किया गया है वो मंत्र महामंत्र बन गया। इसका कारण क्या है हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इंद्रसेन जी, तो सबसे पहला कारण तो ये है कि इसमें भिखारीपन नहीं है, इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है। दुनिया के कोई मंत्र हो उठा के देख लेना और उनका अर्थ करना तो उसमें भगवान से कोई ना कोई मांग अवश्य की गई होगी। एक नवोकार महामंत्र ऐसा है कि जिसमें किसी से कोई मांग नहीं की गई। हमारे जयपुर में पंचकल्याणक हुआ बहुत बड़ा, वहां के मुख्यमंत्री आए राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत, तो उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही वो बहुत सुनने लायक है कि मैं आज तक सैकड़ों सभाओं में व्याख्यान देने गया लेकिन एक भी सभा मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें मेरे सामने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया गया हो और जिसमें लंबी चौड़ी मांगे नहीं रखी गई हो। महावीर जयंती की सभा में भी मैं कई दफे गया लेकिन वहां भी जैन समाज ने कोई ना कोई मांग रखी थी कि महावीर जयंती की छुट्टी करवाओ, नहीं तो कसाई खाना बंद करवाओ, नहीं महावीर जी के मुकदमे को ठीक करवा दो, सड़कें बनवा दो। क्यों? कोई ना कोई मांग अवश्य रखी जाती है। तो हम मिनिस्टर लोग घबराते हैं कि न मालूम क्या मांगेंगे और हम समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ देकर तो आना ही है। समझते नहीं, किसी सेठियों को अध्यक्ष बनाते हैं किसी सभा का तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो जेब कटने वाली है। जैसे मुझे काय को बनाया, मैं तो दो अक्षर भी नहीं बोल पाता हूं, पंडित जी से ही कहता हूं लिख के दे दो मुझे क्या बोलना है। क्यों राकेश जी? ऐसे ही हम मिनिस्टर लोग भी समझते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ मांगा जाएगा। लेकिन आज मैंने इस सभा में ये देखा कि कोई कुछ मांगता ही नहीं है, कोई मेमोरेंडम नहीं, बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूं। अब तो मेरा ही भाषण शुरू हो गया और इसके बाद तो सभा खत्म हो जाएगी। मैं कुछ देना चाहता हूं आप लोगों को, इतनी बड़ी सभा है, 2 लाख आदमी बैठे हैं, आपने मांगा क्यों नहीं मैं क्या दूं? ये सभा मैंने जिंदगी में पहली देखी है। मिनिस्टर बनने के बाद कहीं गया हूं और किसी ने कुछ मांगा नहीं हो ऐसा। उसके बाद मुझे बोलना था तो मैंने कहा कि भाई साहब अजाति के जिन धर्म है धर्मी मांगे नाही और धर्मी मन बन मांगन लगे बेठगिया जग माही। हमारे यहां तो ये लिखा है कि जैन धर्म को अयाचीक है, नहीं मांगने का नाम जैन धर्म है। अजातीक जिन धर्म है इसलिए धर्मी मांगे नाही, जो धर्मात्मा होंगे वे तो कभी मांगना का काम करेंगे ही नहीं और जो धर्मी बन मांगने लगे, धर्मात्मा बन के मांगने लग जाए वह धर्मात्मा नहीं है। ते ठगिया जग माई, वे जगत में ठग हैं धर्मात्मा। आप कहते हो कुछ मांगो मांगो मांगो, आपको पता है, मैंने कहा उन मुख्यमंत्री जी से, आपको पता है आप आदिनाथ बाबा के दरबार में आए हैं, भाग्य से वो जन्म कल्याण का दिन था और आदिनाथ का दरबार लग रहा था। आप तो थे ना माणिकचंद जी, आदिनाथ का दरबार लग रहा था। मैंने कहा आपको जो मांगना हो मांग लो आदिनाथ से। यहां आपसे कोई क्या मांगे, हमने तो उस नवोकार मंत्र को महामंत्र माना है कि जिसमें भगवान से भी मांगने की बात नहीं कही गई है। हमारा भगवान तो वो बनता है जो मांगता नहीं, सब कुछ छोड़कर और नग्न दिगंबर होकर दीक्षा लेके चला जाता है, वो हमारा भगवान बनता है। देनियों का माता तो उनके चरणों में झुकता है। हमारे पंच परमेश्वरी नमो लोए शब्द साहूणम तो वो है कि जिनने तन पर ताजा भी नहीं रखा, सब कुछ त्यागा है, कभी मांगा नहीं है। मांगने वाले वो जैन धर्मी नहीं है। क्यों? जैन धर्म तो त्यागियों का धर्म है। तो नमोकार महामंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उसमें कुछ मांगा नहीं गया है। जैनियों में भी और मंत्र बहुत हैं और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं, आपका विधान किया तो भी जाप तो होता होगा ना, और उसमें भी आप मंत्र की जाप तो देते होंगे ना, जो बैठते होंगे क्या बोलते हैं, ओम राम रीम रूम क्या रौ रा अतिया उषा नमा सर्व शांतिम कुरु कुरु, कितना बढ़िया मंत्र है। ये भी बढ़िया है, नमोकार मंत्र से बढ़िया है विमल जी नहीं? क्यों? इसमें कुछ मांगा नहीं है। क्यों? मांगा तो है। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, हे भगवान सर्व शांति कर दो। ये भी महान है क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, जो कुछ मांगा है सबके लिए मांगा है। एक महानता ये है। और दूसरी महानता ये है कि शांति मांगी है, पांच इंद्रियों के विषय नहीं मांगे, रोटी दाल नहीं मांगी, एयर कंडीशन मकान नहीं मांगा, गाड़ी नहीं मांगी, लाड़ी नहीं मांगी, पाड़ी नहीं मांगी, क्यों मोटर कार नहीं मांगी, शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, ये पांच इंद्रियों के विषय की सामग्री नहीं मांगी, इसलिए ये भी महान है। पर मांगा ही नहीं हो वो बात नहीं है। जो बात नवोकार महामंत्र में है वो बात इसमें भी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ मांग तो रख ही दी है। नहीं मांगे हो कि मेरे लड़के को आप नौकरी पे लगा दो मिनिस्टर साहब, लेकिन इतना तो कह दिया कि हमारे गांव में अस्पताल खोल दो, सब गरीबों का भला हो जाएगा। क्यों? अपने लिए नहीं मांगा लेकिन गांव के लिए तो मांग लिया है? अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए बात नहीं की लेकिन गांव में स्कूल खोलने की बात तो की ना, सबके लिए मेरे लिए नहीं। और ज्ञान दान की बात की, बात तो बढ़िया है लेकिन नहीं मांगने जितनी बढ़िया। इसलिए जैन दर्शन का नवोकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र बन बैठा। मैं कहता हूं क्यों न बने, जिस मिट्टी का एक मुसलमान कभी भी इस भाषा में बात करता हो कि वही मन बे नर मर गए, जे नर मांगन जाही, कि रहीम कवि कहता है कि बे लोग तो मरे हुए लोग हैं जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, अरे रहीम तो उन लोगों को जिंदा स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मुर्दा है मुर्दा। रहीमन बे नर मर गए, जे नर मांगन जाई। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत लोग खुश होते हैं, वो कहते हैं पंडित जी तुमने बहुत बढ़िया किया, ये लोग मांगने वाले हमें इतना परेशान करते हैं, अब थोड़ा आराम तो मिलेगा, सुबह से शाम तक आकर क्यों चंदा मांगने के लिए आ जाते हैं, अब वे व्याख्यान सुनेंगे तो थोड़े आराम तो मिलेगा कि भाई साहब अभी दूसरी पंक्ति भी सुनो, जल्दी खुशी मत मनाओ। दूसरी पंक्ति में क्या लिखा कि उनसे पहले दे मरे जिन मुख निकसत नाही, उनके पहले दे मर गए जिनके मुंह से ना निकलता है। अरे मांगने वाले ने मांग लिया, अब तेरे मुंह से ना निकले इससे बड़ा दुर्भाग्य हुआ तेरा क्या होगा। तू तो उनसे भी ज्यादा पहले ही मर जाएगा, जो मांगने वालों को ना करे वो तो मांगने वालों से भी गया बीता है। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, एक तरफ का सेनापति थे अर्जुन और दूसरी तरफ के भीष्म पितामह गए, द्रोणाचार्य गए तो कर्ण बन चुका था सेनापति। श्री कृष्ण घबराए कि कर्ण के सामने अर्जुन का टिकना बहुत कठिन है, क्योंकि आखिर इसका सगा बड़ा भाई है, समझ में ना। तो उन्होंने उनकी माता कुंती से कहा कि आज मौका है कि तुम जाओ वो कर्ण को बताओ कि वो तुम्हारा बेटा है और अर्जुन का सगा बड़ा भाई है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये बात अर्जुन को पता ना चल जाए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्या उन्होंने कहा क्या बात करते हो, मैं उसके पास जाऊंगी और आज ये बात याद दिलाने तो सारी कहानी बतानी पड़ेगी ना, कि जन्मते ही मैंने तेरे को पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया था। मैं कैसे कहूंगी उस बेटे से ये बात और वो सुनकर उस पर क्या गुजरेगी और वो मुझे कितनी गालियां देगी कि आज अपने बेटों को बचाने के लिए मेरे को आ गई और उस दिन तूने मेरे को गंगा मैया में फेंक दिया था। कि जो कुछ भी हो तुझे जाना पड़ेगा अन्यथा आज अर्जुन नहीं बचेगा। इतना मैं जानता हूं कि कितना ही नाराज हो सह लेना सुन लेना, लेकिन तेरे को मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वीर है योद्धा है और योद्धा लोग नारियों पर हाथ नहीं उठाते, अबलाओं पर हाथ नहीं उठाते, सगी माता पर उठाने का सवाल ही क्या है। ये युद्ध के नियमों को जानता हूं, घबराना नहीं मारेगा नहीं। और इसके बाद उसने बात मानी और नहीं मानी तो नहीं माने तो वो बड़ा दानवीर है, ध्यान से सुनना जिसके लिए मैं कहानी सुना रहा हूं। उससे तू मांग लेना भीख, वो तेरे को मां माने चाहे ना माने, लेकिन दरवाजे पर आंगने वाले मांगने वाले को ना करना उसे नहीं आता है। तो तुम अपने पांचों बेटों का जीवन दान मांग लेना। ख्याल में आया कि नहीं है? तू उसके कवच और कुंडल मांग लेना, उनसे रहित वो हो जाएगा तो फिर उसको युद्ध में हराना आसान हो जाएगा। कि ठीक है बेटा जी, ट्रेन ढोके कुंती गई, जब वो जाने को तैयार हुई तो आपको मालूम है जान कहा जाता है कि इंद्र का अर्जुन का पिता इंद्र है, और कर्ण का प्रताप सूर्य है, ये भी कहा जाता है। कुंती माता गई, उसने बहुत बातें कही और उसने भी सब बात कही तो बहुत नाराज हुआ। और अंत में उसने जब उसने कहा कि मेरे 5 बेटे जिंदा रहें, ये तू मुझे वरदान दे दे, तो उसने कहा ठीक है तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे लेकिन मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। क्या बात कर रही है, मैं तेरा बेटा हूं ना, युद्ध के मैदान में 4 भाइयों को मैं नहीं मारूंगा लेकिन अर्जुन को मेरा प्रमुख प्रतिद्वंदी है, उसे मार दूंगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा तो तेरे 5 बेटे बचेंगे। और यदि अर्जुन ने मुझे मार दिया तो तेरे 5 बेटे हैं। लौट के आ गई, श्री कृष्ण ने कहा मेरा काम नहीं हुआ भगवान जी, अर्जुन नहीं बचेगा। तो अर्जुन के पिता इंद्र को याद किया और इंद्र से कहा कि तुम जाओ ब्राह्मण बनकर और उसके कवच और कुंडल मांग के लाओ, यदि कवच और कुंडल उसके पास रहे तो अर्जुन किसी कीमत पर बचेगा नहीं। इंद्र को भिखारी बनाकर भेजा। ये बात सूर्य को पता लग गई, सूर्य का बेटा था कर्ण, उसने कहा इंद्र अपने बेटा की सुरक्षा के लिए ये कर सकता है तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मरम की बात है। तो दौड़ा दौड़ा गया कर्ण के पास, कर्ण सावधान, इंद्र तेरे दरवाजे पर ब्राह्मण बन के आ रहा है बुद्धा, और दान में तेरे कबच और कुंडल मांगेगा तो गलती से दे मत देना नहीं तो तू मारा जाएगा। क्या तो क्या कहा कर्ण ने, सुनना बहुत मार्मिक बात है कि ऐसे बाप को मैंने दुनिया में बहुत देखे जो बेटों को ऐसा उपदेश देते हैं कि जिससे उनका यश बढ़े, अच्छे काम करने का उपदेश देते हैं कि बेटा दानवीर बनना, युद्धवीर बनना, ज्ञानवान बनना, लेकिन ऐसा बाप मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने बेटे को एक कहे कि तेरे दरवाजे पे कोई मांगने आए तो तू इनकार कर देना, चले जाओ यहां से। ये दानवीर कर्ण कि तेरे कवच और कुंडल चले जाएंगे तो तू मारा जाएगा, कि मारा जा, मरना तो एक दफे है ही, लेकिन वो इंद्र ब्राह्मण नहीं है कि जिसके दरवाजे पर इंद्र भिखारी बनकर आए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में और कौन होगा। इंद्र किस किस के दरवाजे पर भिखारी बन के जाता है, मैं आज का अपना सबसे बढ़िया दिन मानता हूं, मैं इंतजार करूंगा खुशी के साथ कि इंद्र मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आए और मैं उसे दान दूं। क्या करूं, तो बोला ठीक है बेटा तू नहीं मानेगा, जिद्दी है ना, तो एक बात मैं कहता हूं कि बदले में तू फला चीज मांग लेना इंद्र से, तो फिर वो शक्ति तेरे हाथ में होगी तो फिर तेरे को अर्जुन नहीं जीत सकेगा। गजब हो गया, ऐसा बाप जो बेटे को भिखारी बनाता हो, मांगने की शिक्षा देता हो, ये काम मेरे से नहीं होगा। कौन, ये तो उससे भी नीच काम हुआ ना, ना तो तेरा बेटा कर्ण किसी से कुछ मांगेगा और ना किसी भिखारी को निराश लौटाएगा, मरना जीना तो लगा ही है। जिस देश में ऐसा कर्ण, दानवीर कर्ण और नहीं मांगने वाले वो महान माना जाता हो, उस देश में यदि नवोकार मंत्र महामंत्र बन गया तो क्या गजब हो गया जिसमें कुछ मांगा नहीं गया। जिस देश में रहीम जैसा कवि मांगने को मरने जैसा मानता हो, उस देश में जिसमें कुछ नहीं मांगा गया है ऐसा नमोकार महामंत्र यदि महामंत्र बन गया तो कौन से गर्व की बात हो गई। आखिर हमारी मिट्टी में ये विशेषता है ना। जैन धर्म की विशेषता भाई साहब, किसी से कुछ मांगने में नहीं है। हम तो भगवान के सामने भी सशर्त बात करते हैं। क्या कहते हैं भगवान से, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि जब लो नहीं ना से करो हरि को सेवे नारी बरी समय ताधारी के। हे पार्श्वनाथ भगवान, जब लो मैंने आठ कर्मों का नाश नहीं कर पाया है, जब तक मैंने मुक्ति रूपी लड़की से शादी नहीं रचा पाई है।